नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अफ्रीका को केवल कच्चे माल के स्रोत के रूप में नहीं बल्कि मूल्य सृजन और सतत विकास में अग्रणी महाद्वीप के रूप में देखा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री की पांच देशों घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की सफल यात्रा संपन्न। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रांची में 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नोवाक जोकोविच रिकॉर्ड 14वीं बार विंबलडन सेमीफाइनल में पहुंचे, यानिक सिनर से होगा सामना। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने मैनचेस्टर में चौथे टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-1 से अजेय बढ़त बनाई। समाचार प्रभात के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अफ्रीका को केवल कच्चे माल के स्रोत के रूप में नहीं बल्कि मूल्य सृजन और सतत विकास में अग्रणी भूमिका निभाने वाले महाद्वीप के रूप में देखा जाना चाहिए। नामीबिया की संसद को संबोधन में प्रधानमंत्री ने ये बात कही।
अफ्रीका मस्ट लीड इन वैल्यू क्रिएशन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। दैट इज व्हाई वी फुल्ली सपोर्ट अफ्रीकास एजेंडा 2063 फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। वी आर रेडी टू एक्सपांड अवर कोऑपरेशन इन डिफेंस एंड सिक्योरिटी। इंडिया वैल्यूज अफ्रीकास रोल इन वर्ल्ड अफेयर्स। We championed Africa's voice during our G20 presidency, and we proudly welcome the African Union as a permanent member of the G20.
प्रधानमंत्री ने सामूहिक प्रयास का आह्वान करते हुए अफ्रीकी देशों से आग्रह किया कि वे अपनी स्वदेशी पहचान को संरक्षित करते हुए शक्ति के माध्यम से नहीं बल्कि साझेदारी के माध्यम से भविष्य का निर्माण करें।
भारत आज अपने विकास के साथ ही दुनिया के सपनों को भी दिशा दे रहा है, और इसमें भी हमारा जोर ग्लोबल साउथ पर है। इन द 20th century, इंडियाज इंडिपेंडेंस लीड अ स्पार्क वन दैट इंस्पायर्ड फ्रीडम मूवमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग हियर इन अफ्रीका।
भारत नामीबिया के बीच प्रगाढ़ ऐतिहासिक संबंधों को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी मित्रता समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के लोग नामीबिया के मुक्ति संग्राम में गर्व के साथ उनके साथ खड़े रहे।
द पीपल ऑफ इंडिया स्टूड प्राउडली विद नामीबिया ड्यूरिंग योर लिबरेशन स्ट्रगल। इवन बिफोर अवर ओन इंडिपेंडेंस इंडिया रेज द इश्यू ऑफ साउथ वेस्ट अफ्रीका at the United Nations. We supported SWAPO in your quest for freedom. New Delhi hosted their first ever diplomatic office abroad.
प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र की जननी और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की ओर से नामीबिया की संसद के सदस्यों और वहां की मैत्रीपूर्ण जनता को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने नामीबिया के संस्थापक डॉ सैम नुजोमा की विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित की, और प्रधानमंत्री ने हाल ही में नामीबिया में पहली महिला राष्ट्रपति के चुनाव की प्रशंसा करते हुए इसे ऐतिहासिक क्षण और महाद्वीप की लोकतांत्रिक ताकत का प्रतिबिंब बताया। प्रधानमंत्री पांच देशों घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट रहे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की नामीबिया यात्रा कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण रही।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नामीबिया यात्रा उनके पांच देशों के दौरे का अंतिम चरण थी, जो भारत और नामीबिया के द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर साबित हुए। लगभग 30 वर्षों के बाद भारतीय प्रधानमंत्री की नामीबिया की यह पहली यात्रा थी। दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य सेवाएं, UPI जैसी डिजिटल भुगतान प्रणाली और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में नई साझेदारी इस यात्रा की प्रमुख सफलता रही। नामीबिया के विकास में साझेदारी के साथ साथ अफ्रीका के साथ अपने रिश्तों को मजबूत बनाने में भी इस यात्रा का योगदान रहा। विंडॉक पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गार्ड ऑफ ऑनर के साथ भव्य स्वागत किया गया। भारतीय समुदाय द्वारा भी प्रधानमंत्री का उत्साह पूर्वक स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने विदेश में रहते हुए अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए प्रवासी भारतीयों की सराहना भी की थी। प्रधानमंत्री ने अपने प्रवास के दौरान नामीबिया के राष्ट्रपिता सैम नुजुमा को नेशनल हीरोज एकर पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की थी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया गया, जो भारत और नामीबिया के बीच बढ़ते विश्वास और गहरे संबंधों का प्रतीक है। कुल मिलाकर यह यात्रा सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि स्वास्थ्य, तकनीक और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करके भारत की वैश्विक दक्षिण नीति को और आगे बढ़ाने वाली साबित हुई। आकाशवाणी समाचार के लिए विंडहॉक से मैं अपर्णा खुंट।
विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव दम्मू रवि ने कहा कि भारत और नामीबिया के बीच सहयोग की व्यापक संभावनाएं हैं।
सवाल उठा है कि एनवायरनमेंट के बारे में दोनों देश की क्या पार्टनरशिप होगी। आप जानते हैं 22 में इंडिया और नामीबिया की पार्टनरशिप की वजह से हम चीता रिलोकेट किया। अभी उसका सेकंड फेज का बात चल रहा है, लेकिन ये तो सक्सेसफुल पार्टनरशिप है दोनों को देश के बीच में, और उसको बढ़ाना पड़ेगा। और एक्सपर्ट्स के बीच में अभी चर्चा चल रहा है, तो देखना पड़ेगा कि कहां तक हम इसको सेकेंड फेज में ले आ सकते हैं।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रांची में 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के 70 प्रतिनिधि भाग लेंगे।
पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में यौन अपराधों के मामलों की त्वरित जांच और त्वरित समाधान के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की स्थापना सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रत्येक गांव में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने और आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली को लागू करने पर भी चर्चा होगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, शहरी नियोजन और सहकारी प्रणाली जैसे क्षेत्रों को मजबूत करने पर चर्चा के लिए राज्य सरकार द्वारा 20 से अधिक एजेंडे तैयार किए गए। बैठक में झारखंड की ओर से विभिन्न योजनाओं के मद में केंद्र के पास कथित बकाए का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा सकता है। इसके अलावा नक्सल प्रभावित जिलों के विकास के लिए विशेष केंद्रीय सहायता की मांग भी रखी जा सकती है। 14 जिलों में बंद किए गए SRE फंड को पुनः शुरू करने की मांग भी इस बैठक में रखी जा सकती है। बैठक में बिहार के साथ परिसंपत्ति और देनदारी के बंटवारे तथा पश्चिम बंगाल के साथ जल बंटवारे के मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों NBFC से रिजर्व बैंक के ऋण वसूली मानदंडों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। नई दिल्ली में NBFC संगोष्ठी में वित्त मंत्री ने कहा कि जैसे जैसे NBFC मॉडल परिपक्व होता है, जोखिम प्रबंधन पर उतना ही अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। सुश्री सीतारमण ने बताया कि महामारी के बाद से परिसंपत्ति गुणवत्ता में लगातार सुधार हुआ है।
NBFC's fundamentals has been underpinned by strong capital buffers, robust interest margins, and earnings and low levels of impairment. Asset quality has shown steady recovery, particularly since the pandemic, with NBFC sector's gross NPAs having steadily declined from 6.4% in March 2021 to reach the current level of 3% in March 2025.
भारतीय रेल ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में 9,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र जारी किए हैं। रेलवे ने कहा है कि जारी वित्त वर्ष के अंत तक 50,000 से ज्यादा नौकरियों के प्रस्ताव दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
रेलवे भर्ती बोर्ड ने नवंबर 2024 से अब तक कुल 55,197 रिक्तियों की भर्ती को कवर करते हुए 7 अलग अलग अधिसूचनाओं में 1,86,00,000 से अधिक उम्मीदवारों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं आयोजित की हैं। बड़े पैमाने पर ली जा रही परीक्षाएं एक व्यापक भर्ती कैलेंडर का हिस्सा हैं और 2024 से अब तक 1,08,000 रिक्तियों की घोषणा की जा चुकी है। इस तरह बड़े पैमाने पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित कराना एक जटिल प्रक्रिया है। उम्मीदवारों के लिए इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए रेलवे ने उम्मीदवारों के निवास स्थान के नजदीक परीक्षा केंद्र आवंटित किए हैं। महिला और दिव्यांग उम्मीदवारों को विशेष वरीयता दी गई है। परीक्षा में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए रेलवे ने उम्मीदवारों के सत्यापन के लिए आधार आधारित EKYC प्रमाणीकरण शुरू किया है। समाचार कक्ष से राजेश कुमार मीणा।
मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली में कल बारिश के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। अगले दो दिन हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तेज बारिश के कारण इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के द्वारा यात्रियों के लिए एक दिशा निर्देश जारी किया गया है। यात्रियों से हवाई अड्डे तक पहुंचने और संभावित देरी से बचने के लिए दिल्ली मेट्रो और परिवहन के वैकल्पिक साधनों का उपयोग करने के लिए कहा गया है। इस दिशा निर्देश में बताया गया है कि नवीनतम उड़ानों की जानकारी के लिए यात्री अपनी संबंधित एयरलाइनों से संपर्क करें। दिल्ली हवाई अड्डे पर सभी उड़ानों का संचालन अभी सामान्य है। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड 14वीं बार विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके ब्यौरे और खेल जगत की अन्य खबरों के साथ हैं हिमांशु कांडपाल।
विंबलडन में पुरुष और महिला सिंगल सेमीफाइनल मैच तय हो गए हैं। पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में 24 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता सर्बिया के नोवाक जोकोविच का मुकाबला विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर से और दूसरे सेमीफाइनल में मौजूदा चैंपियन स्पेन के कार्लोस अल्कराज का मुकाबला अमरीका के टेलर फ्रिट्ज से होगा। महिला सिंगल सेमीफाइनल में एरिना सबालेंका का मुकाबला अमरीका की अमांडा एनिसिमोवा से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में पोलैंड की इगा स्वियाटेक और स्विट्जरलैंड की मेलिंडा बेंचिच सामने होंगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने मैनचेस्टर में चौथे T20 मैच में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-1 की अजेय बढ़त बना ली है। 127 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 17 ओवर में 4 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इस बीच भारत और इंग्लैंड के बीच 5 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का तीसरा मैच आज से लॉर्ड्स में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 1-1 से बराबरी पर है। उधर स्पेन में तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में भारत ने महिलाओं की कंपाउंड टीम स्पर्धा के फाइनल में पहुंचकर पदक सुनिश्चित कर लिया है। अब शनिवार को फाइनल में भारत का मुकाबला चीनी टाइपे से होगा।
अमरनाथ यात्रा के लिए 7,307 तीर्थयात्रियों का एक और जत्था आज जम्मू स्थित भगवती नगर यात्री निवास आधार शिविर से कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में 5,534 पुरुष, 1,586 महिलाएं, 25 बच्चे और 138 साधु और 24 साधुयां शामिल हैं। इनमें से 3,081 तीर्थयात्री सुबह 3:15 बजे बालताल आधार शिविर और 4,226 तीर्थयात्री सुबह 3:58 पर पहलगाम आधार शिविर के लिए रवाना हुए, जहां से वे पवित्र अमरनाथ गुफा की आगे की यात्रा के लिए रवाना होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
धन्यवाद देवेंद्र। प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा, गुजरात के बड़ोदरा में पुल दुर्घटना, श्रम संगठनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल, बिहार में एनडी गठबंधन के नेताओं की रैली और राजस्थान में जगुआर विमान की दुर्घटना लगभग सभी अखबारों में सुर्खी बनी है। नामीबिया में पीएम को सर्वोच्च सम्मान, वहां की संसद में मोदी ने कहा वैश्विक मामलों में अफ्रीका अहम, नवभारत टाइम्स में है। जनसत्ता की सुर्खी है प्रधानमंत्री ने 17 देशों की संसदों को संबोधित कर बनाया कीर्तिमान। आतंकवाद के खिलाफ जारी वैश्विक लड़ाई को मजबूत बनाएंगे भारत और नामीबिया, हरी भूमि में है। वायुसेना का लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त, दोनों पायलटों की जान गई पर गांव को बचा लिया, अमर उजाला की हेडिंग है। तीनों सेनाओं को 20,000 करोड़ के उन्नत ड्रोन मिलेंगे, 87 ड्रोन खरीदे जाएंगे, 35,000 फीट पर 30 घंटे उड़ान भरने में सक्षम, हिन्दुस्तान के पहले पन्ने पर है। सीडीएस चौहान ने चेताया भारत के सुरक्षा हितों के लिए पाक, चीन और बांग्लादेश की मिलीभगत खतरनाक, वीर अर्जुन में है। भारत बंद, जगह जगह प्रदर्शन और रैलियां, बिहार और बंगाल के अलावा कई राज्यों में हड़ताल बेअसर, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। दैनिक भास्कर ने बिहार में विपक्ष के आक्रामक प्रदर्शन को सुर्खी दी है, गठबंधन के नेता सड़क पर उतरे, बिहार में वोटर लिस्ट पर विपक्ष पर हल्ला बोल, चक्का जाम।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अफ्रीका को केवल कच्चे माल के स्रोत के रूप में नहीं बल्कि मूल्य सृजन और सतत विकास में अग्रणी महाद्वीप के रूप में देखा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री की 5 देशों घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की सफल यात्रा संपन्न। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नोवाक जोकोविच रिकॉर्ड 14वीं बार विंबलडन सेमीफाइनल में पहुंचे, यानिक सिनर से होगा सामना। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।